بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، ارتھات ان پر کارے بدھ رہتے، تو نسندیہ وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریہ وبھوتیاں پراپت کرتے۔ उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रही हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। आज सोमवार है, इस फंद की 15, शाबान की 13 और मार्च की 6 तारीख। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम और दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरानी व्यंजन। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सर्वोच्च नेता ने ईरान में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले को बहुत बड़ा अपराध बताया है। रूसी हवाई हमले के सायरन से यूक्रेन में हाहाकार और खलबली मच गई है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान पर हमले के बारे में नेतन्याहू झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में विस्फोट से 9 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने ईरान में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले को बहुत बड़ा अपराध बताया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का कहना है कि ईरान में छात्राओं को विषाक्त करने का मुद्दा बहुत बड़ा अपराध होने के साथ ही अनदेखा करने योग्य नहीं है। सर्वोच्च नेता ने सोमवार को वृक्षारोपण के बाद ईरान में छात्राओं को विषाक्त करने के विषय की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि देश के अधिकारियों और एजेंसियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। सर्वोच्च नेता का कहना था कि ये बात बहुत बड़ा अपराध होने के साथ ही अनदेखा करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लोग भी लिप्त पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपने इसको समाज के सबसे मासूम वर्ग अर्थात बच्चों के हित में अपराध बताते हुए कहा कि ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि वे लोग जो इस अपराध में लिप्त पाए गए उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई माफी नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि दूसरे उससे पाठ ले सकें।
क्रेमलिन हाउस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है। समाचार एजेंसी ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों ने टेलीफोनी वार्ता की है। क्रेमलिन हाउस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन हाउस के प्रवक्ता पिस्कोव ने एक विज्ञप्ति जारी करके राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी और व्लादिमीर पुतिन के मध्य टेलीफोनी वार्ता की सूचना दी और कहा कि इस वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार क्रेमलिन हाउस की ओर से जारी होने वाली विज्ञप्ति में आया है कि दोनों पक्ष इस बात पर एकमत थे कि दोनों देशों के संबंध विस्तृत व प्रगाढ़ हो रहे हैं और इसी प्रकार इस वार्ता में विभिन्न मामलों के बारे में सहयोग की समीक्षा की गई। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से टेलीफोनी वार्ता की थी जिसमें सीरिया की स्थिति और ऊर्जा परिवहन के संबंध में सहकारिता की समीक्षा की गई है। राष्ट्रपति रईसी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अन्य टेलीफोनी वार्ता में दोनों देशों के मध्य जारी आर्थिक सहयोग विशेषकर ट्रांजिट और ऊर्जा के संबंध में सहयोग पर बल दिया और कहा था कि ये सहयोग न केवल दोनों देशों बल्कि क्षेत्रीय देशों के हित में भी है। इसी प्रकार ईरानी राष्ट्रपति ने अस्ताना बैठक के परिप्रेक्ष्य में सीरिया संकट के समाधान पर बल दिया और कहा कि तेहरान यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
ईरान का कहना है कि यमन की जनता के अत्याचारों के मुद्दे को उठाना हम सबका दायित्व बनता है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने सोमवार को तेहरान में प्रतिरोध के संबंध में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले यमन की अत्याचार ग्रस्त जनता के संदेश को विश्व के दूसरे हिस्सों में ले जा सकते हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति का कहना था कि अरब देशों ने फिलिस्तीन के अत्याचारग्रस्त जनता के दुखों को अनदेखा करते हुए वर्चस्ववादी मोर्चे का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि वे यमन की जनता का भी यातनाओं और अत्याचारों को अनदेखा करते हुए उनका ही साथ दे रहे हैं जो यमन की जनता पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमन पर अतिक्रमण के 8 वर्षों बाद भी यमनी जनता अब भी पूरी दृढ़ता के साथ हमला करने वालों का मुकाबला कर रही है। यमन के प्रतिरोधकर्ताओं को आतंकी और दुश्मन बताकर अतिक्रमणकारी उन पर अधिक से अधिक हमले करते हैं। वे पूरी तरह से यमनी राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं। मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि यमन की जनता अपनी सरकार बनाएगी और अपने भविष्य के लिए स्वयं फैसला करेगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के बारे में संचार माध्यमों में झूठी खबरें नई बात नहीं है। नासिर कनानी ने कहा कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान के संबंध में मीडिया में झूठ बोला जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मीडिया के इस झूठ के कारण अलग हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार की रात ट्वीट किया कि इसका एक कारण ज़ायोनी शासन की वर्तमान स्थिति है। इस समय अवैध ज़ायोनी शासन को गंभीर आंतरिक कलह का सामना है। उन्होंने कहा कि हालांकि वास्तविकता को छिपाने से इस अवैध ज़ायोनी शासन को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। पिछले कुछ सप्ताहों से तेल अविव सहित इसराइल के कई नगरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के अतिवादी मंत्रिमंडल का विरोध करते हुए सड़कों पर आ चुके हैं। ये लोग सत्ताधारी गठबंधन की नीतियों का विरोध करते हुए उसके अंत की मांग कर रहे हैं। कनानी के अनुसार लंबे समय से अवैध ज़ायोनी शासन के भीतर अशांति चली आ रही है। वहां का राजनीतिक संकट इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। कुछ जानकार इसराइल की वर्तमान स्थिति को इसके विनाश के रूप में देख रहे हैं।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लपिड ने कहा है कि ईरान पर हमले हेतु ज़ायोनी शासन की तत्परता के बारे में मैं नेतन्याहू का झूठ पर्दा फाश करूंगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ईरान पर हमले के बारे में बिन्यामिन नेतन्याहू झूठ बोलते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को सचेत किया है कि अगर ईरान पर हमले के बारे में झूठ बोलने से बाज नहीं आए तो मैं उन सब कार्यों की पोल खोल दूंगा जिसके वो जिम्मेदार थे ताकि उनका विकल्प चुना जाए। इसी प्रकार इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को नसीहत की है कि वो कम बोलें और इस बारे में मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि बात कम करें और काम ज्यादा करें। ज्ञात रहे कि यह लपिड एकमात्र अधिकारी व नेता नहीं है जो ईरान के मुकाबले ज़ायोनी शासन की अक्षमता को स्वीकार कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों के नेता और अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईरान की इसराइल के अंदर कभी भी ईरान पर हमले की क्षमता व साहस नहीं था और अगर होता तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता।
बखमुत में रूसी सेना के हावी होने के बाद यूक्रेन में खलबली मच गई है। बखमुत से यूक्रेनी सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। यूक्रेनी सेना अपने बखमुत निवासियों को बाहर निकाल पाने में नाकाम हो रही है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के आर्मी कमांड सेंटर पर हमला कर दिया है। इसके बाद अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से दर्जनों बड़े हमले करने जा रहा है। इसे देखते हुए यूक्रेन में खलबली मच गई है। पूर्वी यूक्रेन के सभी शहरों में जोर जोर से हवाई हमले के सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। सर पर मौत का सायरन सुनकर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के जापोरिजिया आर्मी कमांड सेंटर पर बम गिरा दिया है। कई अन्य शहरों में भी मिसाइल और बमों से हमले शुरू हो गए हैं।
आत्मघाती हमले से पाकिस्तान एक बार फिर थर्रा उठा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सोमवार को एक जोरदार आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। इससे पाकिस्तान की जनता में दहशत का माहौल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार ये विस्फोट क्वेटा सीबी राजमार्ग पर कामबरी पुल पर बलूचिस्तान कांस्टेबली कर्मियों के ट्रक के समीप हुआ। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि किसी आतंकी संगठन ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है।
रमजान के पवित्र महीने में फिलिस्तीनियों के मकान ध्वस्त करने के आदेश जारी। इसराइल के आंतरिक सुरक्षा के अतिवादी मंत्री इतमार बेन गोविर ने फिलिस्तीनियों के मकानों को रमजान के पवित्र महीने में ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। समाचार एजेंसी अनातोली की रिपोर्ट के अनुसार इतमार बेन गोविर ने इसराइली पुलिस को आदेश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण के बहाने रमजान के पवित्र महीने में भी फिलिस्तीनियों के मकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। इसी प्रकार इस अतिवादी जानी अधिकार ने कहा कि रमजान महीने के कारण हमें अपनी जिंदगी नहीं बदलनी चाहिए। जायनी संचार माध्यमों ने भी इसी बारे में रिपोर्ट दिया है कि जायनी शासन के सुरक्षा अधिकारी के इस आदेश के बावजूद इसमें काफी खतरे और इसके दुष्परिणाम होंगे, फिर भी जायनी पुलिस अतिवादी जायनी अधिकार के आदेशों को व्यवहारिक बनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है।
राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का अपमान मैं नहीं करता बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझको याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश जाकर कहा था कि आज़ादी के 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार है, ये सब उन्होंने विदेशों में कहा। राहुल गांधी का कहना था कि मैंने कभी भी देश का अपमान नहीं किया और न ही करूंगा। जब मोदी जी विदेशों में जाकर कहते हैं कि 70 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? तो श्रोतो, इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं ईरान में छात्राओं को जहर देने का मामला, पश्चिमी देश ईरान के तराने से भयभीत और ज़ायनी शासन आंतरिक युद्ध का शिकार। तो सबसे पहले ईरान में छात्राओं को जहर देने का मामला। پچھلے کچھ دنوں کے دوران ایران کے کچھ شہروں میں اسکولی چھاتراؤں کو زہر دینے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس کی پڑتال ایک وشیش گروپ سے کی جا رہی ہے۔ ایران کے گرہ منترالے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سندگدھ نمونوں کی جانچ پڑتال ایک وشیش پریوگ شالا میں کی جا رہی ہے اور جنتا کو شیگری اس کے پریناموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی۔
پچھلے کچھ دنوں کے دوران ایران کے کچھ نگروں میں کئی اسکولی چھاتراؤں کو زہر دیے جانے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس کی جانچ پڑتال وشیش گروپ کر رہا ہے۔ اسلامی گڑتنت ایران کے گرہ منترالے نے گھوشنا کی ہے کہ چھاتراؤں کی بیماری کا کارن بنے سندگدھ نمونوں کی جانچ دیش کی وشوسنی پریوگ شالاؤں میں کی جا رہی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پریناموں سے دیش کی جنتا کو شیگر ہی سوچت کیا جائے گا۔ ایران میں کچھ چھاتراؤں کی سندگدھ بیماری کا معاملہ پشچمی دیشوں وشیش کر امریکہ کے لیے ایک ہتھکنڈے میں پریورتت ہو چکا ہے۔ اب ان کی اور سے اس بارے میں چھاتراؤں کے پرتی دکھاوٹی سہانوبھوتی پرکٹ کی جا رہی ہے۔ یہ سہانوبھوتی وہ لوگ پرکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ایرانی راشٹر کے ورودھ کڑے پرتیبندھ لگا کر ایرانیوں کو بہت دکھ دیا ہے۔ پشچم ہر مدے کو ایران کے ورودھ دشپرچار کے لیے ہتھکنڈے کے روپ میں پریوگ کرتا آیا ہے۔ حالیہ گھٹنا کو بھی استعمال وہ اسی طرح سے کر رہا ہے۔ ایران میں حالیہ مہینوں میں ہونے والے اپدرو کے دوران امریکہ اور اس کے گھٹکوں نے ایران کے بھیتر اشانتی کو پھیلانے کے لیے بھرسک پریاس کیے تھے۔ اس کی آڑ میں اس نے ایران کے آنتک معاملوں میں کھل کر ہستکشیپ بھی کیے۔ پشچم نے ایران کی حالیہ اشانتی کو مانواادھیکاروں سے جوڑتے ہوئے اس بہانے ایران کے ورودھ نئے آرتھک ایوم راجنیتک پرتیبندھ لگائے۔ ان سارے کاموں سے پشچم کا مکھیہ لکش ایران کی اسلامی شاسن ویوستھا کو ادھک سے ادھک کمزور کر کے اس کو گرانا رہا ہے۔ اس سمے پشچم ایران کے بھیتر چھاتراؤں کے وشاکت ہو جانے کے مدے کو اچھال کر جھوٹی سہانوبھوتی پرکٹ کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ پشچم نے ایران کے ورودھ سمگر یدھ چھڑ رکھا ہے۔ ایرانی چھاتراؤں کے سندگدھ روپ سے بیمار ہونے پر پشچم کی جھوٹی ہمدردی کے سندرب میں ایران کے ودیش منتری امیر عبداللہیہ نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے کی جانچ سمبندھت سنگٹھن کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایرانی راشٹر گھڑیالی آنسوؤں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ اسی سندرب میں ایران کے ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ سندگدھ گھٹنا کے آرمبھ سے ہی ایران کے ورودھ سمگر یدھ چھڑنے والوں کا یہ پریاس رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے ایران کے شیکشنک کیندروں کو بند کروایا جائے۔ اس پرکار وہ حالیہ اپدرو میں اپنی وفل پریوجنا کو پھر سے شروع کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وبھن کھیتروں میں ایران کی پرگتی ایوم وکاس سے بھیبیت پشچم نے حالیہ اپدرووں اور اشانتی کا کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ اب وہ ہی کچھ چھاتراؤں کے بیمار پڑ جانے کے مدے کو ہوا دے کر ایران کے وکاس کے مارگ کو بادھت کرنے کے پریاس کر رہے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں پشچمی دیشوں کا۔ ایران کے ایک ترانے سے پشچمی دیش بری طرح سے بھیبھیت ہیں۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی رویش زیدی۔
دنیا بھر میں ابھی ویکتی کی آزادی کا راگ الاپنے والے پشچمی دیش آج کل ایران کے ایک ترانے سے ڈرے سہمے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ ایک ایسا محاورہ ہے جو کافی مشہور ہے۔ آج کل یہ محاورہ پشچمی دیشوں پر سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کل تک جو دیش ابھیویکتی کی سوتنترتا کے نام پر دنیا بھر کے دھرموں، وشیش کر اسلام دھرم کا مذاق اڑانے، اپمان جنک کارٹون بنانے اور پوتر قرآن کی پرتیوں کو جلانے پر اپنی پرتکریا میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ یہ تو ابھیویکتی کی آزادی کا معاملہ ہے، ہمیں اس پر کوئی کڑی پرتکریا نہیں دینی چاہیے، وہی دیش پوتر قرآن کی تلاوت، اس کے انواد، اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک ایرانی ترانے سے بھی بھیبھیت دکھائی دے رہے ہیں۔ प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध ईरानी तराना सलाम फरमांदे की गूंज ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया है। मीडिया सूत्रों ने घोषणा की है कि ब्रिटिश शिक्षा मंत्रालय ने लंदन में इस्लामी गणराज्य ईरान से संबंधित एक स्कूल में ईरानी छात्रों द्वारा पढ़े गए लोकप्रिय सलाम फरमांदे तराने के एक वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। फार्स न्यूज एजेंसी ने अवैध ज़ैनु शासन के सरकारी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिटिश शिक्षा मंत्रालय का चरमपंथ विरोधी विभाग ईरानी छात्रों द्वारा पढ़े गए लोकप्रिय तराने सलाम फरमांदे के वीडियो फुटेज की जांच कर रहा है। समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट ने लिखा है कि नवंबर 2022 में लंदन के एक स्कूल में ईरानी छात्रों द्वारा पढ़े गए इस तराने के वीडियो की जांच गंभीरता के साथ जारी है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के निरीक्षक के दौरान निरीक्षकों ने स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की समीक्षा की और दावा किया कि ये वयस्क सामग्री वाली गैर काल्पनिक पुस्तकें थीं जो स्कूल के छात्रों की उम्र के लिए अनुपयुक्त थीं। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय का चरमपंथ विरोधी विभाग एक दशक से अधिक समय से इस्लामी गणराज्य ईरान के स्कूलों का निरीक्षण कर रहा है। ब्रिटिश शिक्षा विभाग के चरमपंथी विरोधी विभाग ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कर्मचारी शैक्षिक वातावरण में उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले तरीके से चरमपंथी गतिविधियों, नीतियों और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को चला रहे हैं। बता दें कि जुलाई 2022 में इसी तरह के एक मामले में ह्यूस्टन टेक्सास में ईरानी छात्रों को फारसी और अंग्रेजी में लोकप्रिय तराने सलाम फरमांदे को पढ़ते हुए देखा गया था। दूसरी ओर लेबनान के समाचार पत्र अल अखबार ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें यह शोध किया गया था कि कैसे प्रसिद्ध ईरानी तराने सलाम फरमांदे दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि दुश्मन ताकतों को चिंता में डाल दिया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले देश केवल उस हद तक इसका समर्थन करते हैं जब तक उनके हित उससे जुड़े होते हैं, नहीं तो वे केवल एक तराने के मशहूर होने पर भी डरे और सहमे दिखाई देते हैं।
और अब चर्चा करते हैं ज़ायनी शासन के आंतरिक मतभेदों के विषय पर।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
ज़ायनी शासन आंतरिक मतभेद का शिकार है और कुछ टीकाकार कह रहे हैं कि ये ज़ायनी शासन की तबाही के ताबूत पर आखिरी कील है। जब मैंने पाकिस्तान के टीकाकार गुलशन हुसैन नकवी से इसराइल में होने वाले प्रदर्शनों और अमरीकी अधिकारियों की यात्राओं पर उनसे पूछा तो उनका कहना था,
बहुत सारे मुबसरीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि चूंकि इसराइल के अंदर एक दाखिली जंग जो है वो शुरू होने वाली है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो रहे हैं, हो चुके हैं इसराइल के अंदर
जी।
और उन मुबसरीन का ये कहना है कि ये सहूनी नजायज सहूनी हुकूमत जो है ये अपनी ज़िंदगी के 80 बरस पूरे नहीं कर पाएगी।
सही है।
तो उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि एक तरफ से इसराइलियों के तशद्दुद में मजालिम में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ से फ़लस्तीनियों की इस्तेकामत में शिद्दत पैदा हो रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये सूरत हाल जो है ये अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं है, खुद सहूनी हुकूमत के लिए ये खुशाइन नहीं है।
सही है।
चूँकि इसके नतीजे में खुद ये जो हैं अपना इसराइली हुकाम हैं वो खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल अगर जारी रहती है तो ये इसराइल के नुकसान में है। चूँकि ایک طرف سے تو اسرائیل اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے چونکہ, اور دوسری طرف سے جو استقامت جو ہے اور فلسطینی جو ہیں ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب صرف غزہ کے فلسطینی جو تھے وہ اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے, لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو ایک طرف استقامت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے. اس وقت نیتن یاہو کی کابینہ اور فوج کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ داخلی سیکیورٹی کے جو وزیر ہیں وہ آبادکاروں کو مسلح کر رہے ہیں, صہیونی آبادکاروں کو, تو فوج جو ہے وہ جو نیتن یاہو کے جو مخالفین ہیں ان کو مسلح کر رہی ہے.
اور اسی کے ساتھ راجنیتی چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوا.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز. شروتاؤ, اب پرستت ہے ساپتاہک کارکرم وشو درپن.
وشو درپن.
دوستو, کارکرم وشو درپن میں آپ کا سواگت ہے. رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے. آج کے کارکرم میں ہم ورتمان سمے میں میڈیا کی بھومیکا کے بارے میں چرچا کریں گے. آشا کرتے ہیں کہ کارکرم آپ کو پسند آئے گا. ہمارے ساتھ بنے رہیں. دوستو, لوک تانترک دیشوں میں ودھائیکا, کاریہپالیکا اور نیائے پالیکا کے کریا کلاپوں پر نظر رکھنے کے لیے میڈیا کو چوتھے استمبھ کے روپ میں جانا جاتا ہے. 18ویں شتابدی کے بعد سے, خاص کر امریکی سوتندرتا آندولن اور فرانسیسی کرانتی کے سمے سے جنتا تک پہنچنے اور اسے جاگروک کر سکشم بنانے میں میڈیا نے مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. میڈیا اگر سکاراتمک بھومیکا ادا کرے تو کسی بھی ویکتی, سنستھا, سموہ اور دیش کو آرتھک, ساماجک, سانسکرتک ایوم راجنیتک روپ سے سمرد بنایا جا سکتا ہے. ورتمان سمے میں میڈیا کی اپیوگتا, مہتو ایوم بھومیکا نرنتر بڑھتی جا رہی ہے. کوئی بھی سماج, سرکار, ورگ, سنستھا, سموہ, ویکتی میڈیا کی اپیکشا کر آگے نہیں بڑھ سکتا. آج کے جیون میں میڈیا ایک اپریہاری آوشکتا بن گیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ سماج کسے کہتے ہیں تو یہ تتھ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ یا ان ریلیٹڈ منش کو ہم سماج نہیں کہہ سکتے. سماج کا ارتھ ہوتا ہے سمبندوں کا پرسپر تانا بانا, جس میں ویویکاوان اور وچارشیل منشوں والے سمودایوں کا استتو ہوتا ہے. میڈیا ایک سمگر تنت ہے جس میں پرنٹ, پریس, پترکار, الیکٹرانک مادھیم, ریڈیو, سنیما, انٹرنیٹ آدی سوچنا کے مادھیم سملت ہوتے ہیں. اگر سماج میں میڈیا کی بھومیکا کی بات کریں تو اس کا تاتپر یہ ہوا کہ سماج میں میڈیا پرتیکش اور اپرتیکش روپ سے کیا یوگدان دے رہا ہے ایوم اس کے اتر دائتوں کے نروہن کے دوران سماج پر اس کا کیا سکاراتمک اور نکاراتمک پربھاؤ پڑ رہا ہے. پربھاؤ پر غور کرنے پر اسپشٹ ہوتا ہے کہ میڈیا کی سماج میں شکتی, اہمیت ایوم اپیوگتا میں وردھی سے اس کے سکاراتمک پربھاؤں میں کافی ابھی وردھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے نکاراتمک پربھاؤ بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں. آج کے سمے سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میڈیا کی طاقت پہلے سے کہیں ادھک ہوئی ہے تو اس سمے نشپکش میڈیا کہاں پر کھڑا دکھائی دیتا ہے. اس سوال کے جواب میں پشاور پریس کلب کے ادھیکش ارشد عزیز ملک کا کہنا ہے کہ
میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جہاں تک آپ جب اختیار دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. میڈیا جس طرح سٹرانگ ہے دنیا میں اور مختلف ملکوں میں، جہاں تک آپ نے بات کی ریسپانسبلٹیز کی، تو میرا خیال میں کہ یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جرنلزم کیا جائے تو وہ ایتھیکل جرنلزم کیا جائے، جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کو فالو کیا جائے، اس میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایک سچائی سے شروع ہو کہ خبر ہے تو واقعی کیا خبر ہے یا نہیں، یا وہ جو ویسٹرن میڈیا جو ہے آج وہ فیک نیوز چلاتا ہے، ایک پکچر کو اٹھا کے اس کو تھوڑا سا اس کو چینجز کی اور اس کو چلا دیا، کیا واقعی وہاں پروٹیسٹ ہوا یا صرف دو لوگ چار آئے انہوں نے کوئی بات کی اور وہ چلے گئے، وہاں بازار میں بہت سارے لوگ تھے، آپ نے اگر اس کا ایک ویو لیا، آپ نے لیا کہ ایک بازار ہے اس کے اندر دیکھیں جی ہزاروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط ایک تاثر جاتا ہے، تو لہٰذا اس دور میں میڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک موبائل سیٹ ہے جس کے اندر آپ کو بڑی آسانی سے ہر چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر ریڈیو کو آپ سن سکتے ہیں، ہر نیوز پیپر کو، ویب سائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا جب ہم نے جرنلزم کا آغاز کیا تو اس زمانے میں 90s کا وقت تھا، پاکستان میں بھی صرف اخبارات تھے اور پی ٹی وی کا وہ تھا، تو اخبارات یہ تھا کہ 24 گھنٹے بعد اخبار شائع ہوتا تھا، تو آپ اگلے دن وہ خبر دیکھتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2002 میں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور جیو نیوز سے پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا ایک چینل لانچ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ لمحہ بلمحہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد کمپٹیشن بڑھتے بڑھتے آپ پاکستان میں کافی سارے چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بریکنگ نیوز کے چکر میں بھی غلط خبر چلتی ہے، مثال کے طور پر ایک دھماکے کی آواز آپ نے سن لی اور آپ کا رپورٹر کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کوئی بم دھماکہ ہو گیا، اور آپ پھر اس کو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی وہ تو ایک ٹائر برسٹ ہوا تھا، یہ اس کا دھماکہ تھا۔ تو اس طرح کے واقعات کافی ہوتے ہیں میڈیا میں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے خبر کی سچائی کو دیکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایتھکس پہ چلتے ہوئے اس کو بیلنس کرنا ہے اور ایک فیئر ٹریٹمنٹ اس کو آپ نے دینی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ نے اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے۔
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
دوستو، اگر اس سمے پوری دنیا کے میڈیا پر نظر ڈالیں تو ایک بات صاف طور پر دکھائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بدقسمتی سے بڑھتے ویوسائی کرن کی وجہ سے میڈیا میں ایک دوسرے کے پرتی کڑی پرتسپردھا پیدا ہو گئی ہے۔ میڈیا ایک ذمہ دار پترکارتا پر دھیان کیندرت نہ کر کے کھلے طور پر پیڈ نیوز اور گھٹیا پترکارتا کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ یہی کارن ہے کہ سماجک ہتوں کو ویپارک اور راجنیتک ہتوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ اگر پشچمی میڈیا اور سامراجوادی شکتیوں کے نینترن والے میڈیا کی بات کی جائے تو ہم پائیں گے کہ کیسے یہ کسی بھی خبر یا رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ خبر ان کے ہت میں چلی جائے۔ عام طور پر ان دیشوں کے خلاف تو ایسا پرچار پرسار اور زہر اگلتے ہیں کہ جن سے ان کی نیتیاں میل نہیں کھاتی ہیں۔ کیا یہ ایک ذمہ دار میڈیا کی بھومیکا کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ان طاقتور میڈیا کا اثر پاکستان اور بھارت جیسے دیشوں پر نہیں پڑتا ہے؟ ان سوالوں کو جب ہم نے پاکستان کی آج ٹی وی کی مہیلا پترکار فرزانہ علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا،
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ہمارے ہاں فلٹر سسٹم ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں اپنے چینل کی آپ کو ایک مثال دے دوں، بہت ساری بین الاقوامی خبریں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو اس اینگل سے لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر ہے۔ دیکھیں ہم نے صحافت کو انفارمیشن کی فراہمی کی بجائے ایک اور تناظر میں لینا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ذہن سازی کرنے پہ آ گئے ہیں۔ اگرچہ جو ہم نے جرنلزم پڑھا تھا اس میں انفارمیشن دینا، ایجوکیشن دینا اور انٹرٹین کرنا تینوں شامل تھے، لیکن اب انفارمیشن اور ایجوکیشن سے ہٹ کر چیز انٹرٹینمنٹ پہ چلی گئی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کس چیز کو زیادہ جو کلک کرتے ہیں. دیکھیں خبر کی مختلف قسمیں ہیں. اب پڑوس میں ہماری اتنی بڑی تبدیلی آ گئی, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا چونکہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, وہ جس تناظر میں دکھا رہا تھا, اگر آپ کا کرسپونڈنٹ وہاں پہ نہیں ہے تو آپ بھی اسی تناظر میں اس چیز کو دیکھ رہے تھے. لیکن جب آپ کا رپورٹر وہاں پہ موجود تھا, جیسے کہ میں نے خود کور کیا تھا, تو آپ جب دکھائیں گے تو آپ گراؤنڈ ریالٹیز دکھائیں گے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ باوجود اس کے میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے, ہم بھی بہت ساری چیزوں کو پر تنقید کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی وہاں پہ فلٹر ہے, وہاں پہ ایڈیٹر ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کو دیکھ لینا تو اس کی تو کوئی سرحدیں ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی اگر الیکٹرانک میڈیا ہے, براڈ کاسٹ میڈیا کو لے لیں, پرنٹ کو لے لیں, کہیں نہ کہیں چیز فلٹر ہو رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو اس دائرے کے اندر لایا جاتا ہے.
اب جب دنیا اور خاص کر اسلامی جگت یہ جان چکا ہے کہ پشچمی میڈیا کبھی بھی ان کے سمبندھ میں صحیح رپورٹ یا واستوک خبروں کو نہیں دکھائے گا, ساتھ ہی پوری دنیا کی میڈیا پر پشچمی میڈیا کا کافی اثر بھی ہے, تو ایسی استھتی میں اسلامی دیشوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس بارے میں پاکستان کے پشاور پریس کلب کے ادھیکش ارشد عزیز ملک کا کہنا ہے کہ
میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں ویسٹرن میڈیا کی, اب مجھے بتائیں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے, دو بلاکس بنتے ہیں, تو وہاں پہ اسلامی ممالک کہاں تھے؟ آپ کو نظر نہیں آتے. اسی طرح یہ میڈیا کا آپ دیکھیں, بی بی سی, سی این این کب سے کام کر رہے ہیں, ہم نے کب یہ شروع کیا, مطلب کافی لیٹ ہم شروع ہوئے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سارے اسلامی ممالک کے کچھ چینل ایسے ہوتے, اور اس اصل وجہ کیا ہے کہ ریسورسز کی بات بھی ہے, یعنی ایک پرسپشن ہوتا ہے اس کو ریالٹی سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ریالٹی کے لیے آپ کو وہاں پہ خود کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب ایران نے کافی کام کیا میڈیا میں, آپ کے یہاں پہ 10 چینل آپ مختلف زبانوں میں چلا رہے ہیں, 30 کے قریب آپ ریڈیو چلا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایران کی ذمہ داری نہیں ہے, دوسرے جو مسلم ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ اس میں ریسورسز زیادہ ہوں, یہ کوریج جو ہے وہ موقع سے کی جائے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر آپ اس کو سوائے سیٹلائٹ کے یا آپ کسی اور اس میں جا کے ویب سائٹ پہ آپ جا کے آپ کا پروگرام ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن کسی عام جو ہم کیبل وہاں استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ہم نہیں دیکھ سکتے. جبکہ آپ سی این این کو, فاکس نیوز کو, آپ جتنے بھی ویسٹرن میڈیا ہے اس کو آپ کسی بھی کیبل پہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے جو فلمیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے جو کرنٹ افیئر کے پروگرام ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ اگر ہمیں کرنی ہوگی تاکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں چلا جائے, اور ہر زبان میں جب جا رہا ہے تو کم از کم اس آڈین کے گھر تک پہنچ جائے.
کل ملا کر میڈیا سماج کو انیک پرکار سے نیتتو پردان کرتا ہے, اس سے سماج کی وچاردھارا پربھاوت ہوتی ہے. میڈیا کو پریرک کی بھومیکا میں بھی اپستھت ہونا چاہیے, جس سے سماج ایوم سرکاروں کو پریرنا و مارگ درشن پراپت ہو. میڈیا سماج کے وبھن ورگوں کے ہتوں کا رکشک بھی ہوتا ہے, وہ سماج کی نیتی پرمپراؤں مانتاؤں تتھا سبھیتا ایوم سنسکرتی کے پہرے دار کے روپ میں بھی بھومیکا نبھاتا ہے. پورے وشو میں گھٹت विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को मीडिया के माध्यम से ही मिलती है, अतः उसे सूचनाएं निष्पक्ष रूप से सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करनी चाहिए. मीडिया की बहुआयामी भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं में सामने आया है. अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का उपयोग जनहित में करे और समाज का मार्गदर्शन करे, ताकि वो भविष्य में भस्मासुर न बन सके. दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें.
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
सेहत का राज।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आशा है आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आएगा। दोस्तों, ब्रोकली एक प्रकार की सब्जी है जो देखने में फूल गोभी जैसी नजर आती है। हालांकि इसका रंग फूल गोभी जैसा नहीं होता। ये गहरे हरे रंग, बैंगनी रंग या फिर सफेद रंग की होती है। ब्रोकली को उसके कच्चे स्वरूप में या पकाकर भी खाया जाता है। सलाद में भी लोग ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकली का वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका ओलेरासिया। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ब्रोकली मनुष्य को स्वास्थ्य की दृष्टि से कई प्रकार के लाभ पहुंचाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बहुत से रोगों को होने से बचाते हैं। ब्रोकली को गोभी के परिवार से संबंधित बताया जाता है। कुछ लोग ब्रोकली के लाभों के कारण इसको सुपर सब्जी तक भी कहते हैं। सामान्यतः ब्रोकली के ऊपर वाले भाग को प्रयोग किया जाता है जो किसी फूल की तरह नजर आता है। विश्व के अनेक हिस्सों में कई प्रकार की ब्रोकली पाई जाती है, किंतु तीन तरह की ब्रोकली अधिक मशहूर हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कैलबर्स ब्रोकली, अंकुरित ब्रोकली और बैंगनी ब्रोकली। दो प्रकार की ब्रोकली अधिकतर यूरोपीय तथा भूमध्य सागरीय देशों में प्रचुरता से पाई जाती है। गुणों की दृष्टि से ये सभी समान हैं। ब्रोकली का पौधा 80 से लेकर 120 दिनों के बीच काटा जाता है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं। ब्रोकली के इतिहास के बारे में बताया गया है कि इसका संबंध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। ये यूरोप में व्यापक स्तर पर उगाई जाती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में ब्रोकली की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं था। वर्तमान युग में पूरी दुनिया में ब्रोकली का सेवन आम हो चुका है। ये सब्जी का प्रयोग तुलनात्मक रूप में यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अधिक देखा गया है। इनकी तुलना में अफ्रीका में इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। ब्रोकली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भी पाई जाती है। फाओ के अनुसार पूरी दुनिया में ब्रोकली की सबसे अधिक पैदावार चीन में होती है। वहां पर इसका 10 मिलियन टन का प्रति वर्ष उत्पादन किया जाता है। चीन के बाद ब्रोकली पैदा करने वाले देशों में भारत और फिर अमेरिका का नंबर आता है। सन 2018 में चीन ने अमेरिका, नीदरलैंड और मैक्सिको को सबसे अधिक ब्रोकली का निर्यात किया था। ब्रोकली के भीतर पौष्टिक, कार्बनिक, यौगिक और खनिजों सहित विटामिन भी पाए जाते हैं। ब्रोकली की एक विशेषता ये भी है कि इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीज, ट्रिप्टोफैन और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। ब्रोकली में कई प्रकार के अन्य विटामिन और यौगिक तत्व पाए जाते हैं। ये सब मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। हम पहले बता चुके हैं कि ब्रोकली कई रंगों की होती है। हरे और बैंगनी रंग की जो ब्रोकली होती है, उसका मुख्य कारण उसमें पाए जाने वाले विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, खनिज तांबा, जस्ता और फास्फोरस आदि होते हैं। ब्रोकली मनुष्य के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता करती है और शरीर को कई प्रकार के संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। इसके भीतर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ ही साथ कई प्रकार के कैंसरों को रोकने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ब्रोकली से कैंसर की बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। इसके भीतर सल्फोराफेन 4 नामक पदार्थ पाया जाता है। बताया जाता है कि ये नाटकीय रूप में कैंसर को रोकने में सक्षम है। विशेषकर ये स्तन, पेट, कोलन, मलाशय और फेफड़ों के कैंसर को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाता है। ब्रोकली के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर और शरीर की कोशिकाओं को होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ब्रोकली दिल की बीमारियों, अल्जाइमर, कैंसर और गठिया जैसी बीमारियों को रोकने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार ये सब्जी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की गति को धीमा करती है। ब्रोकली के भीतर निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड नामक एक यौगिक तत्व होता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की गति को धीमा कर देता है। वैसे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की गति को रोकने में विटामिन ई, विटामिन सी और कोलेजन जैसे ऑक्सीडेंट भी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में ब्रोकली अच्छी भूमिका निभाती है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन के और कोलीन वे तत्व हैं जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। विटामिन के की विशेषता यह है कि वो शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है और कोलाइन मनुष्य की याददाश्त में सुधार का काम करता है। अल्जाइमर और अवसाद को रोकने में भी ब्रोकली प्रभावी रहती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है। ब्रोकली को कुछ लोग कच्चा ही खा लेते हैं, कुछ लोग इसको भाप में पकाकर खाते हैं, कुछ अन्य तेल में तलकर खाते हैं। ब्रोकली को अगर भाप में पकाया जाए तो उसके भीतर कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शरीर के पित्त को निकालने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रोकली में विटामिन ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जिनमें दिल को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। खून की कमी वाले लोगों के लिए ब्रोकली अच्छी होती है क्योंकि इसमें आयरन के साथ ही साथ अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ये रक्त के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करने के अतिरिक्त ब्रोकली शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। मनुष्य के शरीर को डिटॉक्सीफाइड करने में ब्रोकली की उल्लेखनीय भूमिका है। ये शरीर में मौजूद यूरिक एसिड और यूरिया को बाहर निकालती है। इसको खुजली, गठिया, एक्जिमा और पिंपल्स के उपचार में प्रभावी माना गया है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर ब्रोकली किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि वो लीवर या जिगर को स्वस्थ बनाए रखती है। ब्रोकली को जिगर के कैंसर को रोकने में प्रभावी बताया जाता है, साथ ही इसके इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस से भरपूर होने के कारण ब्रोकली मनुष्य की हड्डियों और उसके दांतों को मजबूती प्रदान करती है। इसका प्रयोग बच्चों, आम लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। ब्रोकली में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यही कारण है कि कब्ज को दूर करने और पेट के विकारों से मुक्ति पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रोकली में मैग्नीशियम तथा अन्य विटामिन की मौजूदगी विभिन्न ऊतकों के साथ ही पेट की सूजन को भी कम करती है। ब्रोकली के माध्यम से शरीर के बढ़े हुए वजन को भी घटाया जा सकता है। ब्रोकली में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में फाइबर इंसान को लंबे समय तक भरे पेट होने का एहसास दिलाता है। इस प्रकार से वजन को घटाने में मदद मिलती है क्योंकि इंसान भूख का आभास न होने के कारण कुछ खाता पीता नहीं। 100 ग्राम ब्रोकली में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है कि रक्त शर्करा को बढ़ने नहीं देते बल्कि इसके बजाय शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। कुछ लोग ब्रोकली का सूप पीना पसंद करते हैं। जाड़ों में इसका सूप पीने से ऊर्जा मिलती है। कहते हैं कि व्यायाम करने से 2 घंटे पहले ब्रोकली खाने से शरीर की ऊर्जा के स्तर को किसी सीमा तक नियंत्रित रखा जा सकता है। ब्रोकली के प्रयोग से शरीर की झुर्रियों को समाप्त किया जा सकता है। ये त्वचा के लिए अच्छी होती है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त शुगर के रोगी ब्रोकली का सेवन करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। ब्रोकली को इम्यूनिटी के लिए अच्छा बताया गया है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने और संक्रमण से बचाने में मदद करती है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि ब्रोकली का क्या महत्व है और ये कितनी उपयोगी है, अगर एक सीमित मात्रा में नियमित ढंग से ब्रोकली का प्रयोग किया जाए तो इससे कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, ऐसे में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। ब्रोकली में विटामिन के पाया जाता है, इसलिए जिन लोगों को शरीर में रक्त के थक्के जमने जैसी समस्या का सामना है उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। वे लोग जो थायराइड के मुश्किल का सामना कर रहे हैं उनके ब्रोकली का सेवन करने से नुकसान हो सकता है, अतः ऐसे लोगों को एक सीमित मात्रा में ही इस सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी व्यंजन, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने ईरान में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले को बहुत बड़ा अपराध बताया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का कहना है कि ईरान में छात्राओं को विषाक्त करने का मुद्दा बहुत बड़ा अपराध होने के साथ ही अनदेखा करने योग्य नहीं है। सर्वोच्च नेता ने सोमवार को वृक्षारोपण के बाद ईरान में छात्राओं को विषाक्त करने के विषय की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि देश के अधिकारियों और एजेंसियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। रूस और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से टेलीफोनी वार्ता की। रूसी हवाई हमले के सायरन से यूक्रेन में हाहाकार और खलबली मच गई है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान पर हमले के बारे में नेतन्याहू झूठ बोलते हैं। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़।